नमो महापतन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः। अंग श्यामलिंग छटाभिरभितो मंदे कृतेन्दीवरं जड्डं जागृदरोच संग विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदि लसत् दामाभिरामोदरं राधास्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यायेत् दामोदरं। श्री श्री माधुर्य कादंबिनी श्रीमद् भागवत में इस जगत के संबंध में बतलाया है, स्वप्न मनोरथ धीयं। स्वप्न में जैसे मनोरथ होते हैं,
स्वप्न मनोरथमिव,
ऐसा ये संसार में है। संसार में कभी देखते हैं कि मैं राजा बन गया, अब उस समय में सपने ही में बहुत आनंद होता है, और सपने में देखते हैं किसी ने हमारा सिर काट दिया, ये भी देखते हैं, और उस समय में बहुत दुख होता है। और थोड़ी देर के बाद में कोई जगा देता है तो वो सत्य है कि मिथ्या है? जो स्वप्न देख रहा था, आज सिर कट गया या राजा बन गया, और किसी ने उठो 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 उठो, तो फिर वो कुछ नहीं। भाई इसी तरह से संसार को देखो, आदमी बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, हमारा सिर काट लिया, हमारा ऐसा हो गया हो गया, और यदि उसी समय बीच में उठा दें तो बस, अरे कुछ नहीं। पहले तो थर थर कांप रहा था, दिल ये भी कांप रहा था, और जब नींद खुल गई तो स्वस्थ हो गई। इसी तरह से संसार को देखो, और जगने की चेष्टा करो, दुखों को स्वप्न की भांति देख लो, सुखों को भी स्वप्न की भांति देख करके भगवान का भजन करो, ये गड़बड़ न होने पाए। यदि कुछ कर्तव्य कर्म भी है तो करो, किंतु उसे बंधो मत, आसक्ति के साथ में मत करो। व्हाट आई टोल्ड,
because Srimad Bhagavatam has described his world to be like a dream. Sometimes in the dream, we see I am become king, and we feel ecstasy, happiness. We feel ecstasy or happiness when we see I have become king in a dream. And sometimes in a dream, we see someone has removed my head, and naturally we become unhappy. But when someone awakens us, then we can understand if this is true or if this is false. Therefore, we should try to see the world like this, and we should make endeavors to try to awaken our consciousness. Therefore, both happiness and stress should be seen to be like a dream, and we should do our adi bhajan.
Therefore, this world, change the microphone.
In this world, we have some responsibilities, so we should do it without attachment.
और भी सोचना चाहिए, हमारे जितने भी अभी स्वप्न में भी जो दुख देख रहे हैं या सुख देख रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? दुखों का कारण क्या है? भगवान को भूलना। भगवान को भूलने से ये सारी स्थितियां आई हैं। इसलिए इसलिए क्यों ना खूब जोर से भगवान का स्मरण किया जाए, जिसे ये सारे जितने दुख हैं कष्ट हैं सदा के लिए दूर हो जाए। घबराओ मत, भगवान भी तो अंतर्यामी है, जो हरि नाम का आश्रय करता है उसको भगवान की नजर उस पर रहती है। मत सोचे जी भगवान नहीं देख रहे हैं, ऐसा समझ करके भगवान के भजन में बढ़ो। What is the reason that we are suffering so much? Why? Because we have forgotten Krishna. So why not we should try to remember Krishna thoroughly, so that in a short time all kinds of sufferings will go. हम लोग शिव और भगवान दोनों में से शंकर को पृथक रूप में ईश्वर समझने पर अपराध होता है, इस पर विचार कर रहे थे। ये तीसरा है कि चौथा है? तीसरा है ना। शतांग निंदा गुरु अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम, हाँ तो ये दूसरा है ना। तो दूसरे नामापराध पर विचार कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ठीक, तो उसमें बतला रहे हैं महाराज परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी से। भगवान शिव ने समस्त भोगों को त्याग रखा है, नंगे रहते हैं, और उनकी जो उपासना करते हैं धनी मानी समस्त भोगों से संपन्न होते हैं। आया समझ में? शंकर जी स्वयं नंगे धड़ंगे रहते हैं, कुछ भी नहीं लेते, और उनके भक्त लोग होते हैं बड़े धनी मानी होते हैं, और लक्ष्मीपति जो हैं भगवान नारायण श्रीहरि लक्ष्मीपति हैं, निखिल ऐश्वर्यों के जितने भी भोग विलास हैं सब उनके पास हैं, किंतु उनके उपासक क्या हैं? निर्धन होते हैं। इसलिए इसका रहस्य क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है? उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी ये कह रहे हैं, सुखदेव जी ने दोनों के, भगवान और शंकर जी के दोनों के स्वरूपों का, उनकी उपासना का तथा माया से शिव का संपर्क और श्री हरि का मार्जित होना इत्यादि विषय का वर्णन किया, दोनों का स्वरूप वर्णन किया। शंकर जी तमोभाव का अंगीकार करते हैं ने? और शंकर और श्रीहरि मायातीत हैं, इनकी उपासना में भेद है, उनमें पार्थक्य रहते हुए भी तत्वतः ये अभिन्न है। ईश्वर चैतन्य ईश्वर के ये दोनों प्रकार के भेद हैं। शंकर जी भी भगवान के ही एक गुणावतार हैं। शिव माइक गुणों से युक्त हैं, इसलिए माइक चीजों को देते हैं। शंकर जी माइक गुणों के अधिष्ठात्री देवता हैं, इसलिए माइक चीजों को देते हैं, धन संपत्ति इत्यादि देते हैं। और श्रीहरि माया से अतीत हैं, इसलिए माइक जो धन संपत्ति और ये चीजें नहीं देते हैं, उनको अपनी सेवा देते हैं, जो कि वैकुंठ राज्य में पहुंचकर इन ऐश्वर्यों को देने पर भी नहीं मान वह न लेगा भक्त। इसलिए दोनों के उपासना में ये भेद है। देखो ब्रह्म संहिता में शंकर जी के तत्व का वर्णन किया गया है। दही दूध का एक विकार है, दही और कुछ नहीं है, दूध ही है किंतु कुछ विकृत अवस्था में है। दूध से दही होता है किंतु दही से फिर दूध नहीं होगा, किंतु दूध की जितनी चीजें उसमें हैं पोटेंसी रूप में उसमें घी इत्यादि सभी कुछ है, किंतु स्वरूप बदल गया। उसी प्रकार शिव जी की ईश्वरता गोविंद के ईश्वरता के अधीन है। श्री हरि दूध हैं और शंकर जी दही हैं। विकार से दूध में विकार पड़ता है तब तो दही होता है। वो विकार क्या है देखो, माया का तमोगुण। शंकर जी तमोगुण अंगीकार और तटस्था शक्ति की स्वल्पता गुण, तटस्था शक्ति का स्वल्प गुण और चित शक्ति का किंचित लादिन मिश्रित संबित गुण, ये तीनों मिलकर एक विशेष विकार उत्पन्न होता है। ये तीन मिला क्या माया का तमोगुण, तटस्था विकास स्वल्पता गुण, तटस्था शक्ति का और चीज शक्ति का किंचित आंशिक रूप में लादिनी मिश्रित संबित, यह क्या चीज है? भक्ति। भक्ति माया का तमोगुण तो पहले कहा है जो अंगीकार किया, और तटस्था शक्ति का स्वल्पता गुण अर्थात जीव का जो गुण है वो, और लादिनी और संबित का दोनों का मिला हुआ ये भक्ति। शंकर जी भक्ति के वैष्णव हैं, वैष्णवान अंग यथाशम, ये तीनों मिलकर के एक विशेष विकार उत्पन्न हुआ। यही विकार से युक्त स्वांश भाव आभास, स्वांशेर आभास स्वरूप त्रिलिंग शिव है, जीव तत्व नहीं है, परमात्मा तत्व भी शुद्ध नहीं है, भगवत तत्व भी शुद्ध नहीं है, विकार अभी जो बतलाया। दूध दही दूध भी नहीं है,
दूध के सिवा दही का अस्तित्व भी नहीं है, दूध के अलावा दही का
और अलग कुछ है भी नहीं। ये गोविंद के गुणावतार कहे जाते हैं, अतः श्री शिव हरि से अभिन्न नहीं है, किंतु फिर भी देवता बतलाया गया है। कभी कभी जीव कभी युग में मनवंतर में कोई योग्य जीव मिलने पर वो ब्रह्मा की भांति शंकर जी का काम वो देखता है। उस समय में अभिन्न नहीं है, जीव तत्व है। इसलिए उसके लिए श्लोक में कहा गया जो लोग हरि को और ब्रह्म रुद्रादि दैवता समत्ते नैव पाशंभित, उन जीव तत्व शंकर जी को भगवान से अभिन्न कहेगा, बराबर बतलाएगा, तो उपासन। ये सब विचार करके कभी भी शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपराध होता है। नाउ यू कैन
আগে বলেছিলেন মাঝে কথা মিলিয়ে বলছিলেন যে শিবজি তো মাইক দেন, মাইক জিনিস আর ভগবান বলছে আমি দিলেও নেয় না। নারদ বলছেন ভগবানকে যে আপনার ভক্তকে আমি টাকা পয়সা দেন না, কেন গরিব রাখা বাঁকার উদাহরণ বলেছিলেন যেন কাঠ কাটতে যাচ্ছে ধুলাতে কাঠ ধুল ঢালছে, এটা বলে দিলে আরো ভালো হবে।
Therefore, Gurudev, sound is not so good, I cannot, sound is not so clear.
Sound, oh my, sound not coming clear. So you could not understand. Along, tumi bolo ta ki bolo.
Sound system.
We should not think that when we are doing Hari Nam, that Krishna does not see. We should always think Krishna is asking these merciful grants upon us. So therefore, the second Namakaran is to consider Shiva and Bhagavan to be the same. This is the second Namakaran. Therefore, the Shiva and Bhagavatam, Krishna Maharaj asked to Sukadeva Goswami that if Lord Shiva has left all material enjoyments and he is naked, but yet the devotees of Lord Shiva have all types of opulence and material enjoyment. But on the other hand, even though Sri Hari, who is the husband of the goddess of fortune, has all opulences at his disposal, the devotees of Narayana are completely distinctioned and bereft of material enjoyment. What is the cause of this? Therefore, Sri Sukadeva Goswami has said, Lord Shiva is in contact with Maya, the material energy. Therefore, he has propensity to offer material objects to his devotees. But Sri Hari, he has no contact with material energy. Therefore, he never gives material objects or material enjoyment. Instead, he gives transcendental things like his seva. Therefore, we discussed yesterday the two types of Swatantra Chaitanya. One is Lord Shiva, who is in touch with Tamaguru. He is a guna avatar. And Sri Hari is also a Swatantra Iswara. But his devotees, the devotees of Hari, do not desire material objects. Therefore, even though both are Swatantra Chaitanyas, independent conscious beings, still they both give different results. Therefore, in the Brahma Samhita, it's described like milk and yogurt. Milk is like Sri Hari, and Dahi, yogurt, which is a transformation of milk, is like Lord Shiva. Therefore, yogurt is nothing else but a transformation of milk. Therefore, everything that is present in the milk is present in the yogurt, like ghee, etc. But still, milk and yogurt is not the same thing. Therefore, Sri Hari, who is the supreme controller, he is referred to be like milk. And Mahadev is described to be like yogurt. And that substance which causes the transformation is called Tamagun. Therefore, Ladini something you for Tixanisha.
Hare Krishna. So, our Adi Guru Brahmaji has explained Brahma Samhita about Shiva Tattva, and our Purvacharya Sri Goswami has explained his commentary Sriyantha Devika about this slok. What is Shiva Tattva? Shri Gurudev explained just now that Tamagun, the good mode of ignorance, is a gun of Maya. So, mode of ignorance is there, Maya Tamagun, and Tadasa Shakti Sarvagun. This is the quality of Tadasa Shakti. Moreover, Gladini, in Jeev Shakti, there are Samvi, Sandini, Gladini. Gladini and provenience of Samvi is there. When mixed in of this, that means the Tamagun of Maya and Sarvagun means little quality of Tadasa Shakti and Jeev Shakti, the Tadasa Shakti from Jiva and Samvi and Gladini. Sandini is something is prominent and Sandini is less. When mixed three all together, and the, what is Sandini and Sandini is bhakti, because she has the seeing bhakti. Moreover, the sometimes of samsa, not only samsa. So note, you have to know what is samsa. Samsa means the incarnation of Bhagavan, like Amitabha Krishna, Nishinade, Sri Nishinna, Sri Ramala, samsa. So not samsa direct, samsa bhavabhas, the semblance of samsa. So if this whole theory combined together, then called Shiva Tattva. So Shiva Tattva is not so easy. So in any yuga, when there is not qualified jivas, then Bhagavan acts as a Shiva himself. And when qualified jiva is there, they are acting Shiva post. Shiva is not a man, Shiva is a post. Brahma is a post. They are working as a Brahma and as a Shiva. Hare Krishna. So just to Narayana Deva, with this work which I had explained yesterday, that whoever thinking that Bhagavan and Brahma seem equal, they must be Pasandhi. So Bhagavan and Shiva and Brahma is not same. Bhagavan is Supreme Personality, Brahma the Ancestry is office maintainer or his servant. Hare Krishna.
Jo log अभी जितना बतलाया गया सब तत्वों के ऊपर विचार नहीं करते हैं वे लोग श्री विष्णु ईश्वर हैं, शंकर ईश्वर नहीं हैं। शिव जी ईश्वर हैं, विष्णु ईश्वर नहीं है। हम विष्णु के अतिरिक्त शंकर को भी नहीं देखना चाहते हैं। हम शिव जी के अनन्य भक्त हैं, हम विष्णु को नहीं देखना चाहते, वैष्णव को भी नहीं देखना चाहते। इस प्रकार विवादग्रस्त होकर नाना प्रकार के अपराध करते हैं, इसलिए अपराध मत करो। रामानु संप्रदाय में ऐसा देखा जाता है कि मरने का चांस होने पर भी शंकर जी के मंदिर में मत जाओ, बहुत कठोर। किंतु महाप्रभु जी सर्वत्र गए। यदि ऐसा अपराध हो तो किसी साधु का संग करो जो इन तत्वों को जानते हैं, और इसके बाद में उसको शंकर जी का और विष्णु का एकत्व प्रतीत होने लगेगा, और वो हरिनाम करते 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 साधु संघ में अपने अपराधों को खय करेंगे। इसी तरह से श्रुतियों के संबंध में समझना है, श्रुति शास्त्र निंदा मत करो। क्यों? एक जगह लिखा है कृष्ण ही परम तत्व है, कहीं लिखा दुर्गा जी सब तत्व है, कभी गणेश परम तत्व है, कोई ब्रह्मा को ही सब कुछ मानते हैं। इस प्रकार से श्रुतियों में ऐसा बतलाया गया है, श्रुतियों में कर्मकांड का विधान किया गया है, कहीं कहीं वेदों में यज्ञ करो अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी इत्यादि, ये सब लिखा। वहां पर लिखा पशुओं की बलि दो लोके व्यवहार सम्मत सेवा जंतर उन्नत तत्व शोधना व्यवस्थित विवाह यज्ञ सुराग्रह राशु निवृत्ति इत्यादि कहा गया है। तो जो कर्मकांड का जो श्रुतियां समर्थन करती हैं उसकी हम निंदा करते हैं, ये भक्ति से इसका कोई संबंध नहीं। कहीं स्वर्ग प्राप्ति की इत्यादि जो संबंधी जो श्रुतियां हैं उनका हम निरादर करते हैं, तो कहते हैं कि यह अपराध है, नहीं करना चाहिए। क्यों? श्रुतियां हैं क्या? आखिर भगवान के मुख की वाणी है, उनके श्वास से निकली हुई है, कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता है। मान लिया कि कोई आदमी अभी निम्न अवस्था में है साधन के, और उच्छृंखल जीवन यापन कर रहा है, उनके लिए बतलाया गया कि यज्ञ करो और उसमें मदपान कर सकता है, उसमें पशुओं की बलि दे सकता है। कहा गया है विशेष कारण से ऐसे दुष्ट लोगों को व्यभिचारी न हो, सब समय मांस मछली खाएं शराब पिए, इसके लिए नहीं। निवृत्ति रिश्ता विवाह इसलिए है कि अंकुश डालो, ये एक से दूसरे पर सब समय व्यभिचार न करे, एक स्त्री से विवाह करके रहे। यज्ञ में विधान किया गया जब पशुओं की बलि दे करके उसे खाए, बल्कि पशुओं को बलि देने की बात ही नहीं है वहां पर। आलंबनम, आलंबन स्पर्श करके छोड़ दो विष्णु के नाम पर, इस प्रकार का विधान है। ये किस लिए? प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में लाने के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसलिए इस प्रकार की श्रुतियों का निंदा नहीं होना चाहिए। बोलो
those persons who do not carefully consider all these very, very fine details of the differentiation between Shiva and Narayan Tattva.
गुरु अज्ञा पर तो कतो विचार करी छे बहु बुलाव छे छड़े दिलम जे बहु कुछ बोले छे।
Therefore, those who do not consider all these points very carefully, then they may make offense. They may think, oh, definitely Lord Shiva is the controller, and Narayan is not the controller. Therefore, they consider themselves to be one-pointed devotees of Shiva, and they neglect Narayan and the Vaishnavas. This is wrong conception, and those persons become implicated in various offenses. Therefore, for example, in the Sri Ramanuja Sampradaya, they have so much taken this point strongly that even if the chance is given, die or go inside a Shiva Mandir, they will die. They will not do pranam to any murti of Lord Shiva. But Sri Chaitanya Mahaprabhu reconciled all these things, that we should respect Mahadev like devotee. Therefore, we should do satsanga with a Vaishnava who knows the difference between Ishwara Tattva and Shankar Tattva, Shiva Tattva. And understanding the unique difference between them, we should continue our Harinam and our lives will be successful. The third Namaparad is Shruti Shastra Nindam. The fourth, to blaspheme the Shrutis and the Shastras. Because sometimes the scriptures say in one place, Krishna is Param Tattva. other shastras, it will say Ganesh is Paratattva, Brahmaji is Paratattva, Shivji is Paratattva. In some shastras, the predominance is given to Karma Kanda, the performance of fruitive activities for elevation to the heavenly planets. Therefore, in some scriptures, it recommends one should do yajna and try to attain Swargalok, the heavenly planets. Some scriptures says we should cut animals as sacrifice. But the scriptures are not intended to push people towards that mark, that way in unrestricted path, no. The 11th canto of Srimad Bhagavatam says that people are naturally inclined towards association with the opposite sex, to drinking wine, to eating flesh. Therefore, the Shastra tries to control them by making them perform it in a regulated way. Therefore, those who attempt to perform fruitive activities, we must not blaspheme them or blaspheme the scriptures. Because the Shrutis, the Vedas, are nothing else but the breathing of the Supreme Lord Krishna. And they have given different instructions according to the qualification of those certain types of people. Therefore, for those persons to do yajna, it's good for them because that is their qualification, and we must not blaspheme the performance, the performers of those activities or the scriptures themselves. For example, people are naturally inclined to drink alcohol, therefore some scripture gives some concession. Okay, you can do this yajna and drink alcohol. People are inclined towards sex, therefore the Shastra says you should marry one woman and be with her. People are inclined to eat meat, therefore you should cut the head of a goat on a special day. But this is meant to control their bad tendencies, to bring them from the path of Pravritti Marg, material enjoyment, slowly, slowly to the path of Nivritti Marg. Therefore the injunction of the scriptures is not to cut the head of a goat. What we should do, that person should touch the head of the goat and say, Shalabai, and release the goat, should not cut off his head.
What are you doing, Chalo Bhai?
Atta Kirtan Karta Bhalo Kare. Bangla.
Tumi sare sare sara Rajendra Kumara Tumara Chai Vishe Shudasandhukara Tumi sare sare sara Rajendra Kumara Tumara ichhai vishe Sidara sankhara Tumi sare sare
Lord,
in our speech,
Amen.
कृष्णस्य अखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरं
Jamla.
Mike.
Thank you.
जैसे अब तक पांच अपराधों की बात बतलाई गई, उसी प्रकार से जितने भी नमा अपराध हैं उनकी रूपरेखा को जानना अत्यंत आवश्यक है। कैसे होते हैं और कैसे अपराधों का सृजन करते हैं और फिर उसकी निवृत्ति के क्या उपाय हैं ये जानकर के साधक उनसे सावधान रहे, अपराध बन भी जाए, निरंतर हरि नाम संकीर्तन करते हुए अनुताप करे। भक्ति पथ में अब और आगे चल रहे हैं, भक्ति पथ में आने वाले जितने अनर्थ हैं वे मूल शाखा से उपशाखा की भांति उत्पन्न होते हैं। कुछ पेड़ से अलग रह करके और कुछ पेड़ में ही, दोनों उत्पन्न होते हैं और मूल शाखा को स्तब्ध करते हैं, पानी इत्यादि सभी सिंचन का वो ग्रहण कर लेते हैं और मूल शाखा बाढ़ चढ़ा वो स्तब्ध हो जाती है। इसलिए उनकी अनर्थों की निवृत्ति भी चार प्रकार की है, पांच प्रकार की। एक देश वर्तनी, बहुदेश वर्तनी, प्राय की पूर्णा और अत्यंत की है। ग्राम जल गया, कपड़ा फट गया। ग्राम जल गया माने सब ग्राम जल गया कि कुछ दो चार घर बच भी गए, पूरे नहीं जलते हैं जलने पर भी। और कपड़ा फट गया तो कहीं एक जगह फट गया कि सब जगह फट गया, तो इसको समझाने के लिए कह रहे हैं अनर्थों की जो निवृत्ति है उसको यदि कहीं एक भाग में वो हो गया तो एक देश वर्तनी निष्ठा के उत्पन्न होने पर बहुदेश वर्तनी निष्ठा पर, और रति के उत्पन्न होने पर प्राय की, और प्रेम के उदित होने पर पूर्णा, और भगवान चरणों की का दर्शन होने पर आतंत की निवृत्ति होता है। अब इसको इस तरह से समझो, एक देश वर्तनी अल्प परिमाण में भजन आरंभ करने पर पहले साधु संघ में गुरु पदाश्रय कर उनकी सेवा कर श्रवण कीर्तन इत्यादि जब आरंभ करते हैं तो एक देश वर्तन थोड़ी सी एक रुपये में दो आना, 16 भाग का दो भाग, इसको एक देश वर्तनी कहते हैं। बहुदेश वर्तनी बहुत परिमाण में अनर्थों की जो निवृत्ति हो जाती है, जैसे रुपये में 12 आना हो गया और 4 आना बाकी है तो बहुदेश वर्तनी। प्राय की, जब प्राय समस्त अनर्थ दूर हो जाते हैं थोड़ी मात्रा में रहती है, जैसे रुपये में 2 पैसा 98 पैसा चला गया, अब 2 पैसा रह गया है, इसको प्राय की। अपूर्णा संपूर्ण रूप से रुपये का रुपया 100% अनर्थ निवृत्ति हो जाए, कुछ भी अंश बाकी नहीं रहता तब पूर्णा। और अत्यंत की पूर्णा निवृत्ति में संपूर्ण रूप से अनर्थ दूर होने पर भी उद्गम की फिर संभावना रह सकती है, फिर से हो सकता है, अर्थात फिर उदित हो सकते हैं। इस विषय में भक्ति स्वामी सिंधु में भी ऐसा कहा गया है। तात्पर्य यह है साधक प्रेम के विकास क्रम में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, आसक्ति आदि स्तरों को प्राप्त हुए अनर्थ की निवृत्ति विभिन्न परिमाणी अंशों में हो जाती है। इसका आगे में विवरण देंगे। इसके बाद में अनर्थ निवृत्ति हो जाने के बाद में किसी किसी कृष्ण भक्त का के प्रति अपराध हो जाने पर तो साधक फिर पतन हो जाता है। अनर्थ निवृत्ति हो गई, यहाँ तक कि पूर्णानर्थ निवृत्ति हो गई द्विज बंदर भगवान राम की तरफ से सेना में था और राम की बहुत सेवा की, अनर्थ कुछ नहीं था। किंतु उसमें भी लक्ष्मण जी के प्रति अपराध होने के कारण फिर से सब अनर्थ उसमें उत्पन्न हो। इसलिए खूब सावधान रहना चाहिए। अतः पुनः नर्थ होने की संभावना हो जाती है, जैसे द्विविध बंदर को हुआ था। अतः जिस अवस्था में अनर्थ निवृत्त में फिर कभी अनर्थों का उद्गम होने की संभावना नहीं रहता, इसलिए उसको अत्यंत की कहते हैं। भगवत दर्शन के बाद में जो अनर्थों की निवृत्ति होती है वो सदा के लिए हो जाती है। भगवत प्राप्ति के बाद भी भगवान की प्राप्ति हो गई, अब कहा दिया उस समय तो अनर्थ रहता नहीं, बाद भी भगवान की प्राप्ति हो गई चित्रकेतु महाराज को, उस समय महापराध की बात सुनी जाती है। शंकर जी नंगे होकर के पार्वती जी को ले रहे हैं और पार्वती जी की और शंकर जी की निंदा किया, कहो ऐसा समझो वो जो अपराध है वो वास्तविक नहीं है, वो वास्तविक नहीं है। जैसे गोपियां कृष्ण को गाली देती हैं, जो लंपट ठग दुराचारी, अब इससे गाली क्या अधिक हो सकता है, किंतु ये गालियां नहीं है। और जरासंध कहता आहा आप बड़े वीर हैं, तो देखो तो ये कहना भी गाली है, अपराध। इसलिए इन सब चीजों को भी समझने की बुद्धि रहनी चाहिए। कोई किसी महात्मा का ऐसा ही कह रहा है, प्रेम से कर रहा है, तब तो भाई वो अपराध नहीं है। चित्रकेतु महाराज जी का अपराध अपराध नहीं है। जय विजय अपराध नहीं हुआ। ऋषियों को सनत सनंदन सनत सनत कुमार को अभिसंपात दिया, तो भगवान को ही के चरणों में अपराध हुआ। उनके सेवकों के लिए अनादर किया, नहीं ये भगवान की इच्छा से हुआ, ये अपराध नहीं है। शिक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया है। ठीक, इसलिए प्रतिकूल नहीं है। यदि प्रसंगवासी इस प्रकार का मानसिक वासना में अपराध मन में जग उठे, विचार परायण बुद्धि वृत्ति के द्वारा मानसिक भाव को जीतना चाहिए। भक्ति जाग अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ की भी बात बतलाई गई। भक्ति जात अनर्थ क्या है? कोई भक्ति कर रहा है तो सब लोग आकृष्ट होंगे, उसे धन संपत्ति रुपया पैसा और प्रतिष्ठा देंगे, सब लोग स्त्री पुरुष सभी आकृष्ट हो जाए। उस समय वो समझता है मैं क्या हो गया, मैं तो गुरु जी से भी अधिक समझ गया। और बस यही अभिमान उनको गिरा देता है। इसलिए भक्ति उत्तर सुकृति से भी बचना चाहिए, दोषों से कभी ऐसा ना आने पाए। दीन ही सब समय बना रहे। भक्ति जात अनर्थों की निवृत्ति बड़ी कठिन है। दुष्कृति जात अनर्थ जल्दी निवृत्त हो जाते हैं, परंतु भक्ति के बल पर प्रतिष्ठा होने पर धन संपत्ति पैदा करना ऐसे प्रबल अनर्थ है जो सहज ही निवृत्त नहीं हो पाते। ऊपर से कहे मैं बहुत दिन हूं, किंतु भीतर से अभिमान है मैं विद्वान हूं, मैं अधिक सुंदर गाता हूं और ये मेरे भक्ति के गुण हैं। इसलिए सब कुछ दूर होगा। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा सा सपच मरे में हृदय नेते कथम साधु प्रेमना। भक्ति कोमल वृत्ति है। सब कुछ दूर हो जाएगा, प्रतिष्ठा नहीं जाती, किसी न किसी रूप में वो जरूर लगी रहती है। इस पर विजय यदि कर ले तो बिरला ही व्यक्ति कर सकता है और वो भक्ति में अग्रसर हो जाएगा। सारांश यह है कि भजन क्रिया से पहले किसी प्रकार की अनर्थों की निवृत्ति नहीं होती। भजन क्रिया आरंभ होने पर दृढ़ता आने में क्रमशः अनर्थ निवृत्ति आरंभ हो जाती है। भजन में शिथिलता आने पर अनर्थ प्रबल हो जाते हैं, यहाँ तक कि भजन करने की इच्छा का भी लोप हो जाता है। भजन करने की इच्छा रहती है तो भी दूर हो जाती है। भजन क्रिया जो साधु और साधु संग और श्रद्धा के सेवन के बाद से होती है उसमें प्रवृत्ति होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जब तक अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती तब तक भगवान की प्राप्ति और प्रेम प्राप्ति के लिए सोचना भी ठीक नहीं। अनर्थ निवृत्ति करो, उसके लिए चेष्टा करो। जो लोग अनर्थ निवृत्ति की चेष्टा प्रारंभ से करेंगे उनके अंदर में लौकिक भोग, विवाह की इच्छा और सब कुछ कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, सहजी रूप में भगवान का भजन संभव हो जाएगा। इसलिए इसको जीतने की चेष्टा करनी, किंतु होगा नहीं अपने आप। ये भक्त कृपा और भगवत कृपा के ऊपर में। इसलिए जैसे भी वो शुद्ध भक्तों के शरणागत हो, स्वजाति आशय ऐसा हो इसके लिए चेष्टा करो, और नहीं तो संसार चक्र में पड़ करके बस इसी में हम लोग रह जाए।
Therefore, in conclusion, we should know very nicely all these amarads, what they are, how they are present in me, and how I can become free from these. Therefore, with repentance, one should chant Hanuman. Therefore, this part of bhakti, the part of original root of Krishna Sarvastan is like the original tree. But sometimes, separate from this tree, there is also the rise of other plants and creepers. These are unwanted desires. Sometimes these separate trees take all the water from the root of the real tree. As a result, bhakti is lost. Therefore, there are five levels describing the removal of the anarchists, five different levels, from all pervasive, the topmost level down to other lotus exit. There are five grades of anasana vritti. The first one is called Ekadesh Bhartani. The second is Bahudesh Bhartani. The third is Praiki. The fourth is Purna. And the fifth is Akhyantiki. Therefore, how to explain? The first one, Ekadesh Bhartani. The example we hear, a village has birds. That's how we understand the whole village is not burned. There are a few houses left. Or if some cloth is torn, we can understand the whole cloth is not torn. It's only torn in one place. So at the first level of anasana vritti, Ekadesh Bhartani, there is some removal of anasas. An easy way to understand this, in one rupee there is 16 anna, 16 parts. Now it's 100 pesa. That time is 100 pesa in one rupee. 1600. So in the first stage of anasana vritti, one part of the rupee has gone, but 15 are still remaining. That means at the beginning stage, one takes the shaman's feet of Gurudev, under the guidance of Gurudev, one performs shaman kirtan. At that stage, he may have reached the first stage of anasana vritti, Ekad Desh Bhartani. That means 15 parts of the rupee are still with him and one is gone. Then at the stage of Bahudesh Bhartani, which is the stage of Nishta, 11 parts of the rupee have gone and 5 are still remaining with him. Understand? But another is still with him, that is called Bahudesh Bhartani. At the stage of Prayaki, that is the stage of Ruchi, 14 parts of the rupee have gone and 2 are remaining with him. At the stage of Purna, all have gone. All parts of the rupee have gone. Only when one piece is left. That's the stage of Bhavabhati. And at Akhyantiki, the whole rupee has gone. All these anakas are finished, but there's still some smell. That's the stage of Prem. Therefore, from Sharma to the stage of Prem, there are all.
Adhyantiki is Bhagavad Darshan.
Adhyantiki is Bhagavad Darshan. And Purna is Bhav.
Prem. Purna is Prem.
And the previous is Rati.
Prayati. Rati. Purna. Prem. Adhyantiki, Bhagavad Darshan. Even if Bhagavad Darshan, some smell is there.
But Bhagavad Darshan, he's telling Bhagavad Darshan, any smell is there?
What I told you should tell.
Okay.
Oh, they have understand.
Okay. At the stage of Adhyantiki, something is there, some smell is really, but it may return. That's the point.
Bhagavad Darshan.
Bhagavad Darshan. So from Shraddha to Prem, these 5 stages of anasana vritti. Never even at the stage of Purna, at the stage of Bhavabhati, there is some presence there of anasas. The example given of Vijaya Gorilla.
Purna is praying.
Still there is something there at that stage.
It may come back, many of us. Mm-hmm.
Like the Vida Gorilla, he was a pastor at Lord Ram. And he was doing so much seva.
He is not clarifying all these things.
So anyway, the Vida Gorilla, he was a pastor at Lord Ram. But he may have first been a Brahman, therefore he was lost. Therefore we should be very careful.
Shyam Rani can speak what I told.
I thought that at the stage of Bhakti, the anarchas have gone, but something is dormant.
In Atyantaki.
Atyantaki is praying.
Atyantaki. If Atyantaki is done. Oh no, Prema is done.
Purna.
And Purna. Even
some possibility
of coming on earth like Dvij Bandar.
Chittaketu Maharaj.
Chittaketu Maharaj. No. And when we see Atantaki has been done, he has taken darshan of Krishna. But at that time you see Mahapatak, Chitraketu Maharaj and others, Jayabija. But they are not seen, no opera.
Only it seems like
that. Only to increase the love and affection of Krishna, Supreme Lord, they have done like this. Thank you.
One more time, will I do? One more time. The five stages are boundless bhakti, excess bhakti, boundless bhakti, priority, holder, adhyantiki. Excess bhakti is anonymity. Boundless bhakti is nishtha. Priority is grati. Puna is prema. Adhyantiki is bhagavat darshan. Therefore, from Shraddha to Prem, this is a graduation of the releasement from anatas. So, even after Bhagavad Darshan, it sometimes appears that anatas have returned. But actually, this is not so. This is just a chance for some shiksha to be given to us, or for their attachment to Krishna to increase. Like Sri Chittaketu Maharaj. Chittaketu Maharaj, he saw Lord Shiva naked with Parvati upon his lap. Therefore, he was cursed to take birth as a demon. But really, this was not offense. Although, when the speaker of Chittaketu Maharaj, when the gopis abuse Krishna, and they abuse, what they abuse the gopis did, no one can abuse more than this. You are watching, you are black, you are this or that. But this is no offense. But when a demon like Sarasana, he just said to Krishna, hey, what type of hero are you? Then this is Aparad. Therefore, Mahabhagavat, he cannot make any offense because everything he does is under the influence of prema. Therefore, even the so-called call of Jaya and Vijaya, this was not due to anatta or offense, this was the direct desire of the Supreme Lord himself. Therefore, bhakti unta anatta. Those anathas which arise from the performance of bhakti, this is very difficult and most difficult to become free of. At that stage, much riches to come to him. Many people start giving fruit and money. That time he becomes bewildered and think, actually, I am more resistant than Gurudev, or I know more than Gurudev. That time his death is approaching. So this bhakti to anatta is very difficult to become free of. People have become free of many anathas, but with the desire for one's own name and fame, the desire for pratishtha is very hard to remove from the heart. Therefore, before the stage of bhajan kriya, sometimes even we see the desire for bhajan completely disappears. Therefore, do not think all this is not necessary. The speculation or the consideration that I will achieve prem, or I will have darshan of Bhagavan before anatta and vritti, this is completely ridiculous. Therefore, first we should become free from all these desires that we have, like desire for marriage, desire to accumulate money. If we become free from these anattas, then easily our mind will run towards the bhajan of Sri Hari. But by our own efforts only, it will not be possible. We need also the mercy of Bhagavan and his dear devotee. Which type of devotee? That devotee who is Swadhyaya Ashraya Shnika, who is in the same line with which we are aspiring to, who is very affectionate to us and who is more advanced than us. By that type of samasana, we can go with this anatta vritti. Otherwise, by our own efforts, it's not possible.
Tomorrow, what?
How could one have free without Bhagavad Gita? I thought
in
prem one has
left
the city and then one is seeing Krishna.
Ki bolche? Bina Bhagavad Darshan ke prem kaise? Oh, first prem then Bhagavad Darshan.
Isn't prem was a city?
Huh?
Prem ki bhakti na bhakti na associate.
Bhagavad prem, after prem we can take darshan of Krishna. If no prem, nothing.
और एक प्रश्न किया
प्रेम की स्थिति क्या वस्तु सिद्धि है या साधन सिद्धि में?
नो, नॉट वस्तु सिद्धि,
साधन सिद्धि तो
भाव, भाव सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, भाव। प्रेम भी जगत में रह करके जो प्रेम अभी है, तो भी अभी कुछ बाकी है। जब प्रेम होकर के भगवान का दर्शन हो जाएगा तब वो आत्यंतिकी आएगा। प्रेम भी जगत में नहीं और इस शरीर से नहीं, इस शरीर से नहीं होगा, वो चिन्मय शरीर होना चाहिए तभी होगा। प्रेम, भगवत दर्शन और प्रेम कैनॉट बी इन दिस बॉडी। टुमारो वी विल गो टू फर्स्ट हरिदेव, देन मानसी गंगा, ड्यूटी ऑफ मानसी, देन ब्रह्मकुंड एंड देन मानसी गंगा पारंगा नौका विलास लीला स्थली चकलेश्वर महादेव एंड यू कैन गिव वाटर टू शंकर सनातन गोस्वामी भजन कुटी एंड यू कैन वर्शिप शंकर देयर बट नॉट बेलपत्र ओनली फ्लावर्स वाटर एंड लाइक गोपीश्वर महादेव एंड देन यू विल कम टू मुखारविंद यू कैन गिव मिल्क और अदर थिंग्स टू हिम एंड दस रिटर्न बैक हियर एंड बी एंगेज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अन्नकूट। अन्नकूट इज थर्ड डे एंड डे आफ्टर टुमारो। इफ एनीवन गिव एनी ब्लेड ऑफ ग्रास टू फॉर अन्नकूट कृष्ण विल एक्सेप्ट। सो we should try to give as much as we have something for Annakoot and especially ladies and ladies of Bengal, those who are initiated, they will have to prepare so many things. बोले बंगाल की जो महिलाएं बांग्लादेश मेरा दीक्षी तारक की पाठ साकुली पीठा पाना आर और जतो रकम सब करते पर और यहाँ की महिलाएं हैं वो लोग भी जैसा होगा वैसा करेंगे एंड ऑल्सो these western ladies devotees they should also prepare what they know. Where? At least 1,000 preparations will be there from papad chutney achar at least 1,000.
Oh good. 3,000
I have two. 365 prakar ka hona chahiye 365
minimum.
और महिलाएं जरा बांग्लादेश तारा प्रेमानंदर काछे जाबे और तादेश मैनेजर थाकबे उमा दीदी
ये साथे
कराएंगे। इधर देखें कि गुरुदेव